अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 15 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमो नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो अज्जायां नमो लोये सौवसामूलं प्रणम्य वीरं परमावबोधं आशादरो सोपन्यधर्मामृतधर्मशास्त्र पदानि किञ्चित् प्रगति करोति। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह अनगार धर्मामृत नामक ग्रंथ है, उसको पढ़ते हुए भी हम 52 पृष्ठ पर आ गए। 52 यहाँ हमने 64 नंबर का श्लोक भी पढ़ा था, वहां गर्भ के दुखों की बात चली थी, अब उसी का विशेषार्थ हम देखने जा रहे हैं। यह विशेषार्थ में कहते हैं, इस विषय में दो श्लोक कहे गए हैं। कौन से? ऊपर देखो ना, शरीर ग्रहण करने के दुखों की बात है, एक तो हमने श्लोक पढ़ा है। यहाँ पर भी और भी कुछ बात बता रहे हैं कि गर्भ में कितने दिन में क्या क्या बनती है बातें, शरीर की रचना, उस संबंध यहाँ एक श्लोक दिया उन्होंने। कललम कलुष शिरत्वम पृथक दशा है न बुद्ध बुद्धोथ गण तदनु ततः पल पेश्यथ क्रमेण मासेन पंच पुलकमतः चर्म नखरोम सिद्धि स्यादंगोपांग सिद्धिरथ गर्भे स्पंदनमष्टम मासे नवमे दशमेथ निस्सरण होने जन्म होना, माता के उदर में वीर्य का प्रवेश होने पर 10 दिन तक कलल रूप से रहता है, फिर 10 दिन तक कलुष रूप से रहता है, फिर 10 दिन तक स्थिर रहता है, दूसरे मास में बुदबुद यानी बुलबुला की तरह रहता है, तीसरे मास में घनरूप हो जाता है, चौथे मास में मांसपेशियां बनती है, पांचवें मास में 5 पुलक अंकुर फूटते हैं, छठे मास में उन अंकुरों से अंग और उपांग बनते हैं, सातवें मास में चर्म नख रोम बनते हैं, आठवें मास में हलन चलन होने लगता है, नौवे और दसवें महीने में गर्भ से बाहर आता है। अभी इसी का और फिर एक्सप्लेनेशन बता रहे, अर्थात जो कल हमने श्लोक पढ़ा था ना, वहां से लेते दोबारा। मृत्यु के बाद जीव तत्काल ही नया जन्म धारण कर लेता है, यानी वो इधर उधर भटकता नहीं रहता है बीच में। जब वह अपने पूर्व स्थान से मरकर नया जन्म ग्रहण करने के लिए जाता है तो उसकी गति सीधी भी होती है, सीधी यानी एक स्ट्रेट लाइन में, और मोड़े वाली भी होती है, यानी टर्न भी ले सकते हैं। तत्वार सूत्र में बतलाया है कि जीव और पुद्गलों की गति आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार होती है, जिसको श्रेणी कहे, श्रेणी यानी पंक्ति, प्रदेशों की पंक्ति कहेंगे। जैसे हमारे पास वस्त्र है तो वस्त्र में क्या है, ताना बाना, ये तो सिंगल जैसे एक सतह पर देख, एक लेवल पर देखते हैं। ऐसा क्यूबिक कुछ होगा तो आड़े भी है, ऐसे भी है, आगे पीछे भी है, तो उसको पंक्तियां कहेंगे, आकाश की श्रेणियां। तो उस पर जीवों का गमन होता है। वैसे जब सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है तब भी यही बात है, जिस स्थान से 14वें गुण स्थान पार करके जीव को सिद्ध दशा प्राप्त होती है। एक ही समय में उसी आकाश की पंक्ति में जाकर ऊपर सिद्धालय में विराजमान होते हैं। ये नियम है, इसलिए निर्वाण क्षेत्र में चले जाते हैं क्योंकि वहां से सीधे उसी आकाश के श्रेणी में जाकर ऊपर स्थित हुए और उस क्षेत्र के द्वारा हम उन जीवों की याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनसे हम प्रेरणा लेना चाहते हैं। उस क्षेत्र में से कुछ नहीं आते आए और हमारा कुछ कल्याण नहीं करता, हम स्वयं उस संबंधी विचार करें, वहां जाके हम स्वयं प्रेरित हो जाए तो ही जब हम तीर्थ यात्रा करना या निर्वाण क्षेत्र में जाना करें। अब कुछ कह रहे थे पंक्ति अनुश्रेणी, हाँ पंक्ति घना नहीं आकाश घन रूप होता है तो इसलिए पंक्तियां आड़ी भी होगी, वर्टिकल भी होगी और आगे पीछे यानी हॉरिजॉन्टल यानी पूर्व पश्चिम भी होगी, दक्षिण उत्तर भी होगी और ऊपर नीचे भी होगी। पंक्ति तो सिंगल प्रदेशों की सिंगल लाइन को यहाँ पंक्ति कहेंगे, उसी को श्रेणी कहेंगे। जैसे लोकाकाश की बात करना है तो लोकाकाश की सिंगल श्रेणी ऐसे हम देखते हैं, ये तो कहीं एक राज्य है, कहीं पांच राज्य है, कहीं सात राज्य है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सर्वत्र सात राज्य और हाइट वाइज 14 राज्य। तो जहां से जहां तक गमन होता है वहां की वो कितनी दूरी पर जाना है, मान लेते 5 फुट पर ही जन्म लेना है वो भी सीधी लाइन में चला जाएगा, ऐसा टर्न लेके घूमकर ऐसा नहीं जाएगा। और ये भी देखा था कि विदिशा यानी अग्नि नैऋत्य वायु ईशान्य दिशाओं में गमन नहीं होता, मुख्य दिशा पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में होता है या ऊर्ध्व में या नीचे में, यही बात यहाँ बता रहे हैं कि जीव और पुद्गलों की गति आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार होती है, उसी को श्रेणी भी कहते हैं। देखो लोकाकाश के लिए वो जगत श्रेणी, क्योंकि लोकाकाश का पूरा हम घनफल उसको मापेंगे 343 घन राज्य है और सिंगल जिसको जगत श्रेणी कहते हैं उसको इक्वल में डिवाइड करेंगे नहीं 7 × 7 × 7 तो उसको कहेंगे जगत श्रेणी, यानी पंक्तियों की सिंगुलर लाइन वो कितनी है तो 7 राज्य। आकाश यद्यपि एक और अखंड है, जब आकाश कहते तो पूरा ही आकाश है, उसमें लोकाकाश और अलोकाकाश हमने उसमें भेद किए समझने के लिए, क्योंकि जहां अन्य सभी द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश है और जिसमें बाकी तो द्रव्य नहीं एकमात्र आकाश है वो अलोकाकाश है। उसमें अनंत प्रदेश है और वे जैसे वस्त्र में धागे रहते हैं उसी तरह क्रमबद्ध है, क्योंकि उसके अपने पोजीशन प्रदेशों की चेंज तो नहीं होगी, ऊपर के प्रदेश थोड़े नीचे आ जाए, नीचे के इधर उधर हट जाए, ऐसे तो बातें होती ही नहीं, जो जहां है वहां पर है। जैसे हमारे ये टाइल्स लगे जिस क्रम से वो तो कायम है, उसको कोई बदल नहीं सकता, ये चटाई है उसके जो धागे है वो उसी पोजिशन में है, ये तो घन स्वरूप है, उसके भी प्रदेश जहां है वहीं पर है, उसी के अनुसार जीव गमन करता है। यानी हम कहेंगे वो धागा पकड़ के श्रेणी पकड़कर उसका गमन होता है, ये विग्रह गति की बात चल रही है। यदि उसके मरण स्थान से नए जन्म स्थान तक आकाश प्रदेशों की सीधी पंक्ति है तो वह एक समय में ही उस स्थान पर पहुंचकर अपने नए शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करने लगता है। शरीर के योग्य वर्गणाएं यानी जैसे जो कोई आहार वर्गणा जिसको कहेंगे उसके द्वारा शरीर की रचना औदारिक की भी वैक्रियक की भी, परंतु उसमें जो कोई डिफरेंस है वर्गणाओं में भी वो अपने योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उसमें कौन से वर्ण के है कौन से जिसको स्पर्श रस गंध वर्ण तो उस प्रकार के नाम कर्म के उदय से उस जाति के वर्गणाओं को ग्रहण करे। ये जो सीधी पंक्ति में गए ये नरक में भी जाने वाला सीधा जा सकता है, डायरेक्ट नीचे की तरफ ही गमन होगा उसका। मनुष्य 3 इंच मरकर नरक में जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले ऊपर जाएंगे फिर थोड़ा सा मुड़ेंगे फिर नीचे आएंगे, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट वो नीचे की तरफ चलेगा। फिर नीचे जाने के बाद अगर मोड़ लेना है तो लेना भी पड़ेगा, क्योंकि नरक बिल कहाँ पर स्थित है डिपेंड्स, एग्जैक्टली हम जहाँ है उसी के नीचे तो नहीं हो गए ना सर, किसी का बाय चांस हो सकता है। ये तो हो गई रुजु गति। अन्यथा अन्यथा ने वो अगर सीधी पंक्ति में नहीं है उसका जन्म स्थान, तो उसे 1 या 2 या 3 मोड़े लेने पड़ते, कल हमने इसकी बात की थी, और उसमें 2 मोड़ ले तो 3 समय या 3 मोड़ ले तो 3 समय और 3 मोड़े लेता है तो 4 समय। उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह का 2-3 अर्थ होते हैं, विग्रह का होता है मोड़, ये भी अर्थ होता है, और सीधी गति को अविग्रह से भी कहते हैं। विग्रह का एक अर्थ है शरीर, नया शरीर धारण करने के लिए जो गमन होता है उसको विग्रह गति कहते हैं, और तीसरा है रोकना, यानी वहां शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं है, शरीर कर्म का ग्रहण चल रहा है, शरीर के परमाणु तो जहां वो जन्म स्थान है वहां पहुंचने पर ग्रहण करेगा, तब तक नहीं ग्रहण करेगा। ऐसे 3 अलग अलग अर्थों के कारण इसको विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में स्थूल शरीर न होने से, स्थूल यानी हमारा बहुत स्थूल है और किसी का वो स्थूल नहीं था, या औदारिक शरीर को यहाँ स्थूल शरीर कहा है, या जो वैक्रिक भी है जो तेजस और कारमन को सूक्ष्म करेंगे ये स्थूल हुआ। तो कहते द्रव्येंद्रिया भी नहीं होती, क्योंकि अभी शरीर की रचना नहीं हुई है, द्रव्येंद्रिया नहीं बनी है, अतः वहां वह इंद्रियों से जानने देखने रूप व्यापार भी नहीं करता। द्रव्य प्राण तो कहेंगे, क्योंकि जितनी इंद्रियां होने वाली है उतने द्रव्य प्राण कहेंगे उसको, इसलिए विग्रह गति में कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि उस समय उतना क्षोभ है जीव का उस जाति का। पंचेंद्रिय में जन्म लेने वाला है तो 5 इंद्रिय प्राण कहेंगे वहां पर। अपर्याप्त जीवों में केवल वो हम बल प्राण नहीं लेते, वचन बल मन बल और श्वासोश्वास को नहीं लेते, हाँ, परंतु वहां कर्मों का क्षोभ है, ज्ञान का उतना उघाड़ है, ज्ञान की पर्याय नहीं होती, ऐसे नहीं कहा, हाँ बिल्कुल, उसको भी द्रव्य प्राण ही कहेंगे। कर्मों का जो क्षोभ है आप निकाल के देखना, हमने जो जीव कांड में टेबल देखे थे उसमें भी कितने द्रव्य प्राण होते हैं जीवों को, उसकी चर्चा हुई थी कि नहीं अपनी, उसको प्राणों में गिनेंगे, वहां तो उपयोग में भी गिना है, ऐसा उपयोग नहीं होता ऐसा भी नहीं कहा है, वो तो अभी अपेक्षावश अलग अलग बातें होती, इंद्रियों रूप उपयोग नहीं है, सर्वथा उपयोग से रहित तो होगा नहीं, कि उपयोग का लक्षण है, अभी उसका एग्जैक्ट कथन कहीं नहीं मिलता है, जितना यहाँ भी दिखाया है लिखा है, वो विग्रह गति में उपयोग नहीं रहता इसे यहाँ लिख दिया।
विग्रह गति में जाता है तो माने जो मरण शरीर हुए वही शरीर का आकार से जाता है,
आकार तो पूर्व का है, क्योंकि अभी नया जो आकार है संस्थान नाम कर्म का उदय, जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँचने पर होता है, इसलिए पूर्व का आकार कायम रहता है, यानी इंद्रियों से देखने जानने रूप कार्य नहीं हो रहा है, बस इतनी बात है। गर्भ में जाने के बाद की शरीर रचना का जो कथन ग्रंथकार ने किया है, संभव है वह भगवती आराधना का ऋणी हो। भगवती आराधना में गाथा 1003 से शरीर की रचना का क्रम वर्णित है, जो ऊपर 2 श्लोकों में कहा है, तथा लिखा है कि मनुष्य के शरीर में 300 अस्थियां हैं, जो दुर्गंधित मज्जा से भरी हुई है, अस्थिय ने हड्डी, और मज्जा का मुझे अर्थ लगता है बोन मैरो होना चाहिए अंदर। नहीं नहीं, मसल के लिए स्नायु कहते हैं, मज्जा यानी बोन्स के अंदर जो मैटर है ना, बोन मैरो कहते हैं उसको। जैसे ये हड्डी है तो हम इसको ऐसा आड़ा काटेंगे ऐसा, तो क्या दिखेगा बाहर? तो राउंड वो बोन मैटर यानी बोन दिखेगा, और अंदर वो मैरो जिन है, हाँ सॉफ्ट है। जैसे
कैंसर के लिए बोन वाले टेस्ट करते
हैं, हाँ वो वहां से निकालते हैं, यहाँ से भी बोन मैरो निकाल के उसकी टेस्ट चलेगी, या बोन मैरो भी उसके इंजेक्शन देते हैं जिसका ब्लड नहीं बनता है उसके लिए बोन मैरो डायरेक्ट दे दे उसको, ये बोन मैरो के ये उसको मज्जा कहेंगे। 300 ही संधियां हैं, संधियां ने जॉइंट्स देखो, ये अभी एक उंगली है तो यहाँ एक ज्वाइंट है, यहाँ एक ज्वाइंट है, यहाँ एक ज्वाइंट है, इसका इसका इस बोन का इसका यहाँ, ये बीच में तो 8 छोटी छोटी हड्डियां है, यानी वो सब मिलकर वो कितने ज्वाइंट्स है वो बताए, क्योंकि 300 अस्थियां हैं तो 300 संधियां हैं, 900 स्नायु है, 700 सिरा है, 500 मांसपेशियां हैं, 4 शिलाजाल है, 16 कडेर है, अभी उनको भी उसका अर्थ समझ में नहीं आया है, 6 सिराओं के मूल है और 2 मांस रज्जु है। शिरा ने वेसल्स, ब्लड वेसल्स या नसे, नस को भी कहते हैं, नर्व्स को भी कहते हैं और ब्लड वेसल्स को भी कहते हैं, यहाँ पक्का मालूम नहीं किसके लिए। 7 त्वचा है, 7 कालेयक है, 80 लाख कोटि रोम है, पक्वाशय और आमाशय में 16 आते हैं यानी इंटेस्टाइन्स, 7 मलके आशय हैं, 3 स्थूना है, 107 मर्मस्थान है, क्योंकि ना मर्मस्थान वहां आघात करने पर, हाँ हाँ हाँ, 9 द्वार है, ये सबको मालूम है जिनसे सदा मल बहता है, 9 द्वार मालूम है ना, 9 द्वार है घेने रहे हैं, तो बीच में एक शब्द है नवदार बहे ऐसा कुछ है, बहते है कि नाम हाँ, नहीं वो मुझे याद नहीं, वो उसकी लाइन याद नहीं आ रही है। 9 द्वारों से मल बहता है, 2 आंखें हैं, 2 वायु के नॉस्ट्रिल्स है, 2 कान है, 2, 2, 4, 5, 2, 7 और फिर मलमूत्र जो जहां से निकलता है, ऐसे 9 द्वार। मस्तिष्क, मेद, ओज और शुक्र 1-1 अंजुली प्रमाण है, वसा 3 अंजुली, पित्त 6 अंजुली, कफ भी 6 अंजुली प्रमाण है, मूत्र 1 आढ़क, विष्ठा 6 प्रस्थ, नख 20 और दांत 32 है। अब ये जो कोई भगवती आराधना में उन्होंने बताया है ये उसका वर्णन यहाँ पर है। आगे गर्भ से बाहर आने में जो क्लेश होता है उसे कहते हैं 65 नंबर ऊपर। रचना यानी उसकी शक्ति की पूर्णता होती है, रचना पूरी होती है ऐसा नहीं, शक्तियों की पूर्णता होती है। जो परमाणु ग्रहण करके उसको रसरूप और खलरूप परिणमाने की शक्ति, परिणमन तो पूरे लाइफ टाइम तक चलेगा उसको, ख्याल में आती बात। अभी जिसको एम्ब्रियोलॉजी मालूम है मेडिकल साइंस का, उसको भी पता है कितने महीने में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर डेवलपमेंट पूरी हुई तब थी तो 9 महीने तक तो डेवलपमेंट कुछ ना कुछ तो चलती रही ना उसकी, भले बन रहे, बनने का प्रोसेस चल रहा है, पूर्णता तो तब कहेगी। फिर वो जिसको हम हॉस्पिटल में जन्म हुआ कहेंगे, तो करणान योग में तो वही वो जन्म स्थान कहलाएगा जहाँ गर्भ धारण कर लिया है, उसे गर्भ में आ गया है उसका तो भो धारण कर लिया, उसने शरीर धारण कर लिया तभी उसको जन्म कहेंगे एक अपेक्षा से। देखो आगे गर्भ से बाहर आने में जो क्लेश होता है उसे ऊपर ऊपर श्लोक पढ़ना है। कौन सी ही है उसके राग क्या है? गर्भ क्लेशान द्रुतेर विद्रुतो वा निंद द्वारे नैव पृच्छाद् विवृत्य निर्यस्तत्तद् दुःखदत्या कृतार्थी नूनं दत्ते मातृग्रामनस्यम्। चलो ख्याल नहीं आया उसका राग कौन सा, आगे गर्भ से हम पढ़ेंगे, अभी उसका अर्थ पढ़ेंगे। गर्भ के कष्टों के पीछा करने से ही मानो भयभीत होकर गर्भस्थ जीव मलमूत्र के निंदनीय द्वार से ही कष्टपूर्वक नीचे को मुख करके निकलता और गर्भ में आने से लेकर उसने माता को जो कष्ट दिए उससे उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, मानो इसी से वह माता को भयानक प्रसव वेदना देता। आगे जन्म के पश्चात होने वाले कष्टों का विचार करते हैं। कथंचन वपु वहनश्रमोऽथ दुःख प्रदोष वसन दर्शन सुस्थितस्य जन्मोत्सवं सृजति बन्धुजनस्य यावत् यास्तास्तमाशु विपदो पतन्ति तावत्। इसका अर्थ देखते हैं। किसी तरह अभी पता है ना ये माता को बहुत कष्ट देता है। अभी आप लोगों का हॉस्पिटल से कुछ संबंध है कि नहीं मालूम नहीं है, मैटरनिटी होम्स में तो कितनी माताएं तो चिल्लाती रहती है, ये स्पेशली जनरल हॉस्पिटल देखो हम घूमने जाते हैं ना उस सायन हॉस्पिटल के वहां, तो इधर वो वार्ड है शायद मैटरनिटी वाले, तो जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं रोज कोई ना कोई तो माता को दुख देता है ना। हमने तो ऐसी माताएं देखी है औरतें कि आदमी को जोर से गालियां देती रहती है डिलीवरी का कंसर्न नहीं होता है। देखो इसका हम अर्थ देखेंगे इच्छा से। किसी तरह महान कष्ट से जन्म लेकर वह शिशु शरीर धारण करने के परिश्रम से उत्पन्न हुई दुखदायक श्वास लेता। पहला श्वास तो वही होता है ना, गर्भ में तो श्वास नहीं चल, बाहर निकलने के बाद श्वास लेता है। अजीब वो अभी पूरा इतना सारा शरीर धारण करने का कष्ट हुआ है ना, तो दुखदायक श्वास लेता है। उसके देखने से अर्थात उसे जीवित पाकर उसके माता पिता आदि कुटुंबी उसके जन्म से जब तक आनंदित होते हैं तब तक शीघ्र ही बच्चों को होने वाली प्रसिद्ध व्याधियां घेर लेती है। जन्म हुआ बालक का तो वो मिठाई बांटना वगैरह वो सब चालू होता है बाय दैट टाइम, यहाँ तो उसके जन्म के बाद के कितनी व्याधियां होती है वो तो चालू हो जाती है कि अब बचपन की निंदा करते हैं। देखो लोग इसी में आनंद मान रहे हैं इसलिए उनको थोड़ा जगा रहे हैं। त्रक्वापि दिगत्रपो मरमरन् मूत्राणि मुञ्चन्मुहुः यत्किञ्चिद्वदने पर्यन् प्रतिभयम् यस्मात् कुतश्चित् पतन् लिम्पन् स्वाङ्गमपि स्वयं स्वशकृता लाला विलास्यो हिते व्याशिद्धो हतवत् रुदन् कथमपि छिद्येत बाल्यग्रहात्। बचपन में शिशु निर्लज्जता पूर्वक जहाँ कहीं भी निंदनीय मलमूत्र आदि बार बार करता है, कोई भी वस्तु खाने की हो या न हो अपने मुख में दे लेता है, जिस किसी भी शब्द आदि से भयभीत हो जाता है, अपनी टट्टी से स्वयं ही अपने शरीर को भी लेप लेता है, मुख लार से गंदा रहता है, मिट्टी आदि खाने से रोकने पर ऐसा रोता है मानो किसी ने मारा है, इस बचपन रूपी ग्रह के चक्कर से मनुष्य जिस किसी तरह छूट पाता है। यह जो मनुष्य जन्म लिया है उसका अपना बचपन उसका ग्रह कहते, जैसे ग्रहों की दशा कहते ना, ग्रहों की कुछ चक्कर चल रहे वैसे। आगे कुमार अवस्था का तिरस्कार करते हैं। 68 नंबर। धूलिधूसर गात्रो धावन वटाश्म कंटका गिरुज प्राप्तो हसत सहेलक वर्गम मर्षन कुमार स्यात्। बचपन और युवावस्था के बीच की अवस्था को, अवस्था वाले बालक को कुमार कहते हैं। कुमार रास्ते की धूल से अपने शरीर को मटीला बनाकर दौड़ता है तो गड्ढे में गिर जाता है या पत्थर से टकरा जाता है या तीखे कांटे वगैरह से बीन जाता है। यह देखकर साथ में खेलने वाले बालक हंसते हैं तो उनसे रूठ जाता है। अब यौवन की निंदा करते हैं। 69। पित्रो प्राप्य मृषा मनोरथ शतैस्तारुण्यमुन्मार्गगो दुर्वार व्यसनाप्ति शंकि मनसो दुःखार्चिष स्फारयन् तत्किञ्चित् प्रखर स्मर प्रकृते येनोद्धाम्नः प्रीतुन् क्लिश्नन् भूरि विडम्बना कलुषितो दुर्गतौ मच्छति। माता पिता के सैकड़ों मिथ्या मनोरथों के साथ कि बड़ा होने पर यह पुत्र हमारे लिए अमुक अमुक कार्य करेगा, क्या कहते हैं? माता पिता उसके बारे में सैकड़ों मनोरथ कर रहे हैं, उनकी इच्छा होती है अमुक लाइन में पढ़े, बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो कुछ हो, है ना, तो उसके लिए बारंबार उसको टोकेंगे, बोलेंगे, करेंगे। तो कहते कैसे मनोरथ बताए? मिथ्या मनोरथ। वो तो जो होने वाला तो निश्चित है, अभी आजकल कितना क्या टेंशन लेते हैं माता पिता सबको पता है कि माता पिता के सैकड़ों मिथ्या मनोरथों के साथ कैसे मनोरथ कि बड़ा होने पर यह पुत्र हमारे लिए अमुक अमुक कार्य करेगा। तो कहते युवावस्था को प्राप्त करके कुमार्गामी हो जाता है और कहीं यह ऐसे दुर्व्यसनों में न पड़ जाए जिनमें से इसका निकलना अशक्य हो, इस आशंका से दुखी मन माता पिता की दुख ज्वाला उनको बढ़ाता हुआ काम के तीव्र वेग से पीड़ित होकर ऐसे निंदनीय कर्मों को करता है जिससे प्रतिष्ठित माता पिता को क्लेश होता है तथा वह स्वयं समाज और राजा के द्वारा दिए गए दंडों से दुखी होकर नरकादि दुर्गति में जाता है। अब जो दुर्व्यसनी है, निंदनीय कार्य करते हैं, ऐसे को सामने रखकर ये बात लिखी गई। जो युवावस्था में भी निर्विकार रहते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। 70 नंबर। दन्यास्ते स्मरवाणवानन शिखा विप्र प्रवलगद्रुभ शाराम्बुर्निरवग्रहेन्द्रिय महाग्राहोऽभिमानोर्मिक यैर्दोषाकर संप्रयोग नियत स्वीति स्वचाश्चक्रिभिः स्तीर्णो धर्म यश सुखानि वसुव तारुण्य घोरार्णव। युवावस्था घोर अर्णव यानी घोर समुद्र, युवावस्था एक भयंकर समुद्र के समान है। उसमें काम रूपी बड़वाग्नि सदा जलती रहती है। बड़वाग्नि समझते हैं? हाँ, ये समुद्र में जो जलती है ना उसको बड़वाग्नि के। एक तो जंगलों में जलती है और ये तो समुद्र, वहां तो पानी है, फिर भी वहां ऐसे बड़े बड़े बड़वाग्नि जलती रहती है। हाँ,
तेल रहता है ना,
तेल रहता है। हाँ, बलवीर्य रूप खारा जल उमड़ा करता है। निरकुंश कहा, निरंकुश उस दिन भी ऐसे निरकुंश, निरंकुश यानी जिसकी अंकुश नहीं है, जिस पर कंट्रोल नहीं है। निरंकुश इंद्रिय रूपी बड़े बड़े जलचर विचरते हैं, जैसे समुद्रों में जलचर यानी समुद्र में रहने वाले मगरमच्छ वगैरह जो विचरते हैं, घूमते रहते हैं, वैसे यहाँ जिन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, ऐसे यानी इसकी इच्छाओं पर कंट्रोल है, अभिमान रूपी लहरें उठा करती है। समुद्र दोषाकर अर्थात चंद्रमा की संगति पाकर उफनता है, और जवानी दोषाकर अर्थात दुर्जन की संगति पाकर उफनती है। ये वहां उसके साथ सिमिलैरिटी बताई। जिन्होंने धन की तरह धर्म यश और सुख को अपने अधीन करके, अधीन अधीन हिंदी में ऐसे दोनों वापरते हैं पर हम तो अधीन कहने की हमें आदत है, इस घोर जवानी रूपी समुद्र को पार कर लिया वे पुरुष धन्य है। युवावस्था के पश्चात आने वाली मध्य अवस्था की 11 पद्यों से निंदा करते हुए सर्वप्रथम संतान के पालन के लिए व्याकुल गृहस्थ धन के लिए जो कृषि आदि करता है उसके कष्टों को कहते हैं। यही पर है ना 71। यत्कंदर्पवशंगतो विलसति स्वैरं स्वदारेष्वपि प्रायोहं युरितस्ततः कटुततस्तुघाटको धावति अप्यन्याय शतं विधाय नियमात् भर्तृं यमिद्धाग्रहो वर्धिज्वा द्रविणाशया गतवया कृष्यादिभिः प्लुष्यते। जो संतान प्राय अहंकार में आकर जिस स्वार्थ में अनिष्ट प्रवृत्ति करती है और काम के वश होकर अपनी धर्मपत्नी में भी स्वच्छंदता पूर्वक काम क्रीड़ा करती है, उसी संतान का अवश्य पालन करने के लिए अति आग्रही होकर मध्य अवस्था वाला पुरुष बढ़ती हुई धन की तृष्णा से सैकड़ों अन्याय करके भी कृषि आदि कर्म से खेद किन्न होता। यहाँ कृषि आदि कहे हैं, न तो हम वर्तमान में देखते हैं तो अपने पुत्र मोह के लिए क्या नहीं कर, ये इसका अर्थ है, बस और कुछ नहीं। ऐसा भी है उसको स्वयं को लोभ है और पुत्र के नाम भी देता है और पुत्र का मोह भी तो है ही उसमें, दोनों ही है। आगे कहते हैं कि कृषि पशुपालन और व्यापार आदि से दोनों लोग नष्ट होते हैं। यहाँ तो ऑर्डिनरी कुछ जिसको हम कहते हैं असी कृषि वो बोले बताइए, परंतु जो दुराचार करेगा, जो भी आजकल की तारीख में हम देखते हैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी किया तो उसका परिणाम से तो किया है तो अवश्य उसको भोगेगा वो नरकादि गतियों में जाकर। यहाँ 72 नंबर को हम पढ़ेंगे। यत् संभूय कृषि बलै सह प्रशो प्रायः खरम खिद्यते यद् व्यापत्ति मयान पशु नवतित देहं विशन योगिव यन्मुष्णाति वसुन्यसु निवठक क्रूरो गुरुणामपि भ्रांतस्तेन पशूयते विदुरितो लोकद्वय श्रेयस। यतः वह मध्यावस्था वाला पुरुष पशु के तुल्य किसानों के साथ मिलकर अत्यंत खेद खिन्न होता है और जैसे योगी योग द्वारा अन्य पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है वैसे ही वह पशुओं के शरीर में घुसकर विविध आपत्तियों से ग्रस्त पशुओं की रक्षा करता है तथा ठग के समान क्रूर वह मनुष्य गुरुजनों के भी प्राणों के तुल्य धन को चुराता है। इसलिए वह विपरीत मति इस लोक तथा परलोक के कल्याण से वंचित होकर पशु के समान आचरण करता है। ये पैसे के लिए वे कुछ भी दुराचरण करता है ये बात यहाँ बता रहे। विशेषण यहाँ खेती पशुपालन और व्यापार के कष्टों और बुराइयों को बतलाया है तथा खेती करने वाले किसानों को पशुतुल्य कहा है। यह कथन उस समय की स्थिति की दृष्टि से किया है। आज भी गरीब किसानों की दशा उनका रहन सहन पशु से अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि पशुओं का व्यापार करने वाले पशुओं की कितनी देखरेख करते थे यह उक्त कथन से प्रकट होता है कि वे पशुओं के कष्ट को अपना ही कष्ट मानते थे तभी तो पशुओं के शरीर में प्रवेश करने की बात कही है। यानी अभी ये जो लिखा गया था कितने हमने देखे थे 700-800 साल पहले की बात है यहाँ पर तो उस जमाने का चित्रण है जिसे सामाजिक परिस्थिति। तीसरी बात यह है कि व्यापारी उस समय में भी अन्याय करने से सकुचाते नहीं थे। दूसरों की तो बात ही क्या अपने गुरुजनों के साथ भी छल का व्यवहार करके उनका धन हरते थे। ये सब बातें निंदनीय है इसी से इन कर्मों की भी निंदा की है। कर्मों के ने इन कार्यों की निंदा की है। आगे धन के लोभ से देशांतर में जाकर व्यापार करने वाले की निंदा करते हैं। अपना देश छोड़कर परदेश में क्यों जाता है जीव ऐसा पैसा कमाने। 73 यत्र तत्र गृहिण्यादीन् मुक्त्वापि स्वान्य निर्दय न लंघयति दुर्गाणि कानि कानि धनाशया। अपनी पत्नी पुत्र आदि को यहाँ वहाँ छोड़कर या साथ लेकर भी धन की आशा से यह मनुष्य किन वन पहाड़ नदी वगैरह को नहीं लांघता और इस तरह अपने पर तथा अपने परिजनों पर निर्दय हो जाता है। स्वयं भी कष्ट उठाता है और दूसरों को भी कष्ट देता है। आप कहेंगे उस जमाने में कष्ट से जाना पड़ता था आज तो क्या हवाई जहाज में बैठे और चले गए और वहां तो सुख से रहते हैं। वो कितना सुख है वहां जाने की बात कर रहे हैं पैसा कमाने। वहां तो रोज का ताजा खाना भी भोजन भी नहीं मिलता है। तो पूछते कि आज फुल बिल मिलेगा क्या फुल वहां जाने पर पता चलता है वहां की क्या क्या सुख है। हम पहली बार 2004 में जाके आए मुझे लगा वो किसी पंडित ने हमको पूछा भी नाम से क्या लेना देना तो क्या क्या देखा है कैसा था वहां। उन्होंने बोला दुखी जीवों को देखकर हम दुखी होकर आए। वहाँ आते दो चार महीने के लिए तो हमें लगता है अरे वाह कितनी मजा है वहाँ क्या क्या है कितनी वहाँ की कुछ फोटो दिखाएंगे ये दिखाएंगे घर दिखाएंगे कार दिखाएंगे परंतु वहाँ का दुख क्या है हम जब जाते तो हमारे सामने रोते हैं। हमारी उम्र के वो बच्चों को छोड़ नहीं सकते क्योंकि मुंह वहाँ पड़ा है बच्चे उनके बच्चे वहाँ है पैसा बहुत है यहाँ आके सेटल भी हो सकते हैं परंतु उनको छोड़कर आने का मन नहीं होता है। उनके भी जो कोई प्रॉब्लम्स होगी। और ये बातें सुनने को अच्छी लगती मगर मिलती नहीं है। अभी आप कहेंगे आजकल सब कुछ मिलता है, सीडी है, ये है, वो है, टेलीफोन पर भी चलते हैं प्रवचन, वो तो वो बात नहीं रहती। आगे ब्याज से आजीविका करने वालों की निंदा करते हैं। वृद्धि लुब्ध्या धमरणेषु प्रयुज्यार्थान सहा सुधी तदा पच्छंकितो नित्यं चित्रं वार्तुषिकश्चरे। आश्चर्य है कि ब्याज से आजीविका करने वाला सूद देने ब्याज इन दूसरों को पैसा देता है ना ब्याज से, सूद को ब्याज के लोभ से ऋण लेने वालों को अपने प्राणों के साथ धन देकर सदा उसकी आपत्तियों से भयभीत रहकर प्रवृत्ति करता है। अपने प्राणों के साथ धन देकर धन देता है तो अजीब अपना प्राण दे रहा है, ये कहना चाहता है। अर्थात ऋण वालों के ऋणदाता को सदा यह भय सताता है कि ऋण लेने वाले पर कोई ऐसी आपत्ति न आ जाए जिससे उसका ऋण मारा जाए। उल्टा हुआ यही चल रहा है। और यहाँ आश्चर्य इस बात का है, ब्याज के लोभी को धन प्राणों के समान प्रिय होता है, ब्याज नहीं मिलता है। वह धन दूसरे को दिया तो मानो अपने प्राण ही दे दिए, और फिर वो कब आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा कैसे आएगा उसकी चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। किंतु दूसरों को अपने प्राण देने वाला तो प्रवृत्ति नहीं कर सकता क्योंकि वह निष्प्राण हो जाता है, किंतु ऋणदाता प्राण देकर भी प्रवृत्तिशील रहता है। जिसके प्राण नहीं वो कोई प्रवृत्ति नहीं करता, परंतु ये ऐसा है अपना प्राण इन्हें धन देकर भी प्रवृत्ति चलती रहती है। आगे सेवा कर्म की निंदा करते हैं। 75 स्वे सद्वृत्त कुल श्रुते च निरनु क्रोशी कृत स्तृष्णया स्वं विक्रीय धनेश्वरे रहित विचारस्तदाज्ञावशा वर्षादेष्वपि दारुणेषु निविळध्वान्तासु रात्रिष्वपि व्यालोग्रास्वटवीष्वपि प्रचरति प्रत्यन्तकं यात्यपि। कहाँ कहाँ भटकता है उसका वर्णन है। देखो, अपने पर और अपने सदाचार कुल तथा शास्त्र ज्ञान पर निर्दय होकर लोभवश सेठ राजा आदि को अपने को बेचकर योग्य अयोग्य अयोग्य का विचार छोड़कर मनुष्य अपने स्वामी की आज्ञा से भयानक वर्षा आदि में भी जाता है, घने अंधकार से अच्छन्न रात्रि में भी विचरण करता है, भयानक जंगली जंतुओं से भरे हुए बियाबान जंगल में भी घूमता है, अधिक क्या मृत्यु के मुख में भी चला जाता है। आगे शिल्प कर्म आदि करने वालों की निंदा करते हैं। आप कहेंगे सभी कर्मों की निंदा करें ना, षट कर्मों की। 76 चित्रय कर्म कला धर्मय परासु या परो मन हर्तृम तदर्थिनाम श्राम्य त्यार्थ पोषेक्षितायन। शिल्प आदि से आजीविका करने वाला पुरुष शिल्प प्रेमी जनों के मन को हरने के लिए उनके सामने अन्य शिल्पियों की निंदा करता है, अन्य कारीगरों की। उनके शिल्प में दोष निकालता है चाहिए ना, और अनेक प्रकार के कर्म कला और धर्म के निर्माण का श्रम उठाता है, क्योंकि भूख से पीड़ित उसके स्त्री पुत्रादि उसका रास्ता देखते हैं। देखो ये कर्म कला ये बताए ना कि लकड़ी के काम को कर्म कहते हैं, गीत नृत्य आदि को कला कहते हैं, यानी एक पैसे कमाने का जो आजीविका का साधन है उसकी बात करते हैं, और मूल्य लेकर पुस्तक वाचन आदि करने को धर्म कहते हैं, यानी किसको पढ़कर सुनाना है लिखना है। अभी लिखना तो स्याही में आ जाएगा, 58 पेज पर आते हैं। शिल्पियों की दुर्वस्था बतलाते हैं, आशावान गृहजनम उत्तम अरणम अन्यानप्याप्तैरिव सरसो धनैर्घिनोति छिन्नाशो विलपति भालम आहते स्वं द्वेष्टिष्टानपि परदेशमप्युपैति। शिल्पी उनकी दुर्वस्था बता रहे थे ना, मुझे अपने शिल्प का मूल्य आज या कल मिल जाएगा इस आशा से हर्षित होकर शिल्पी मानो धन हाथ में आ गया है इस तरह अपने परिवार को साहूकार को तथा दूसरे भी संबंधी जनों को प्रसन्न करता है और निराश होने पर रोता है, अपने मस्तक को ठोकता है, अपने प्रियजनों से भी लड़ाई झगड़ा करता है तथा परदेश भी चला जाता है। आगे कहते कि वो प्रदेश में भी धन की आशा से पुनः खिन्न होता है। 78 आशया जीव तिनरो न ग्रंथा उपिवत्या पंचाशते त्युपायज्ञ स्ताम्यत्यर्थाशया पुनः। मनुष्य आशा से जीता है गांठ में बंधे हुए सैकड़ों रुपयों से नहीं, इस लोकोक्ति के अनुसार, यानी वो कहां बताए कहेंगे इसी पद्धति कहने को। जीविका के उपायों को जानने वाला शिल्पी फिर भी धन की आशा से खिन्न होता है। क्या कहते हैं, ये और धन कमाने की आशा है ना, उसी से वो खिन्न रहता है, दुखी रहता है, और चाह पड़ी है उसको, अब वहां जाके उसने कमाया फिर भी वो पूरा तो नहीं है, इसलिए और कमाने के उसके दुख तो बना रहता है। आगे कहते कि इष्ट धन की प्राप्ति होने पर भी तृष्णा शांत नहीं होती। अब ये सभी कर्मों के लिए अप्लाई करना है, जो कुछ आजीविका का साधन है, तो कहते हैं कि इष्ट धन की प्राप्ति होने पर भी तृष्णा शांत नहीं होती। पेट भरने से तुष्ट नहीं होता, क्या भरना है उसको, पेटी, पटारो, अच्छा पेटी से काम नहीं चला, पटारो नहीं तो बैठ के भी खाएंगे सो तो सात पीढ़ी बैठ के खा सकेगी आराम से, इतना धन है उसके पास, फिर भी वो कमाने के पीछे वो नहीं, वो तो जैसे बैल को जोड़ते हैं ना वो गाड़ी में, आठवीं पीढ़ी की चिंता सही। कथम कथम अपि प्राप्य किंचित इष्टम विधेर्वशात, जो मिला है वो भी विधि के वश से मिला है। पश्यम दीनम जगत विश्वम अप्यधीशितुम इच्छति। देखो पूर्वकृत शुभ कर्म के योग से, अरे इतने कष्ट उठाए ना उसने, परदेश में गया, बाल बच्चों को छोड़ के गया, तो कहते पूर्वकृत शुभ कर्म के योग से जिस किसी तरह महान कष्ट से कुछ इष्ट की प्राप्ति होने पर वह जगत को अपने से हीन देखने लगता है कि मैं तो अभी धनवान हुआ ये बाकी क्या है, मैं तो सबसे सामने बहुत अच्छा बनू, यानी संपत्ति वाला हूं, और समस्त विश्व को भी अपने अधीन करने की इच्छा करता है। ये तो कहीं रोक नहीं उसके, अभी ये इतना धन कमाए तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। आगे कहते कि धन प्राप्त होने पर आने वाली अन्य विपत्तियों को कहते हैं। हमने तो विपत्तियों को दूर करने के लिए धन कमाने की सोची थी। दाया दाद्य क्रूरमावर्त्यमान पुत्राद्यैर्वा मृत्युना छेद्यमान रोगाद्यैर्वा बाध्यमानो हताशो दुर्दैवस्य स्कंदकं दिग्विभर्ति। धन संपन्न होने पर मनुष्य को धन के भागीदार भाई भतीजे बुरी तरह सताते हैं, अथवा मृत्यु आकर पुत्रादि से उसका वियोग करा देती है, या रोगादि पीड़ा देते हैं। इस तरह वह अभागा, यानी धन मिलने पर तो सुखी होना चाहिए था, तो कहते उसको ऐसी ऐसी तकलीफें, दुर्दैव के उस रूप को लिए फिरता है जिसे नियत समय पर ही चुकाना होता है। रोग आना है, पुत्र का वियोग है, या वो स्वयं सबको छोड़कर मरकर चला जाता है, तो कहते कि वो तो नियत समय पर तो उसको चुकाना ही है। मध्यम अवस्था वाले मनुष्य को विपत्तियों के कारण होने वाली अरति और जीवन से अरुचि को बतलाते हैं। ये तो धनवान की बात हुई, अब अन्य जीवों की बात करते हैं। पीपीलिका भी कृष्णा हेलिवा पद्भिर्दुराशय दंदश्यमान क्वरतिं यातु जीवतु वा कियत्। तो कहते चीटियों से बुरी तरह खाए जाने वाले काले सर्प की तरह, ये सांप को जब चीटियां काटती है तो चीटियों से बुरी तरह खाए जाने वाले काले सर्प की तरह विपत्तियों से सब ओर से घिरा हुआ दुखी मनुष्य किससे तो प्रीति करे और कब तक जीवित रहे। देखिए आजकल वो तो आत्महत्या कर लेते हैं ना, कितने किसान है या अन्य कोई है, तो कितने विपत्तियों से कब तक लड़ते रहे, कब तक जीवित रहे। आगे कहते सफेद बालों को देखकर होने वाले दुख को कहते हैं। 82 नंबर। जरा भुजंगी निर्मोकम पलितम वीक्ष वल्लभा या अंतिरुद्वेगम उपश्यन नप्यपैत्योजसोन्वहम। जरा नाम की भुजंगी बताई, वृद्धावस्था रूपी सर्पिणी की केंचुली के समान। ए, मालूम है सर्प की केंचुली क्या होती है? नहीं मालूम? काचली। क्या कहते हो आप अंग्रेजी में, क्या कहेंगे? ये उसके पूरी ऊपर की स्किन, पूरी की पूरी, जैसे ये जो है पूरा का पूरा निकल जाता है उसमें से, उसको छोड़कर साफ नया उसका अंदर से नई स्किन उत्पन्न होती है। वो कभी देखे नहीं आपने? सुना है, सुना है। हाँ वैसे तो ये मैंने तो इसका भी देखा है, छिपकर मैंने तो ऐसा देखा, मुना के घर में देखा, वो पूरा निकलता है, वो उसी को निकाल निकाल कर खा भी रही थी अपने। इसके भी कॉकरोच उसके भी देखते हैं, वो भी अंदर ऐसे सफेद कॉकरोच के भी देखा होगा, ऊपर की वो निकाल देते हैं ब्राउन स्किन, वो कुछ दिन के लिए वो सफेद सफेद दिखता है। यहाँ कहते वृद्धावस्था रूपी सर्पिणी की केंचुली के समान, वृद्धावस्था इटसेल्फ वो सर्प की केंचुली के समान बताए। सफेद बालों को देखकर विरक्त होने वाली प्रिय पत्नियों का स्मरण करके ही बुढ़ापे की ओर जाने वाला मनुष्य दिनों दिन ओज से क्षीण होता है। विशेष अर्थ कहा भी है कोप, कोप समझते क्रोध किसी का कोप हुआ नहीं कहा। भूख, ध्यान, शोक और श्रम आदि से ओज क्षीण होता है। ओज यानी उसकी जो ताकत को या उसका जो तेज है, तेज वो कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। वैद्यक शास्त्र के अनुसार ओज शरीर के धातु रस को पुष्ट करता है। बुढ़ापे का प्रभाव बतलाते हैं। 83 विस्रसोद्देहिका देह वनमृणाम यथा यथा चरन्ति कामदा भावा विशीर्यन्ते तथा तथा। मनुष्यों के शरीर रूपी उद्यान को बुढ़ापा रूपी दीमक जैसे जैसे खाती, दीमक समझते वाइट आय, मराठी में उसको क्या कहते हैं, वाळवी, गुजराती में उदई, वैसे वैसे उसके कामोद्दीपक भाव स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यह शरीर उद्यान के समान है, उद्यान की तरह ही इसका पालन पोषण यत्न से किया जाता है। जैसे उद्यान को यदि दीमके खाने लगे तो बगीचा लगाने वाले के मनोरथों को पूरा करने वाले फल फूल सब नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही बुढ़ापा आने पर मनुष्य के कामोद्दीपक भाव भी स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। बुढ़ापे की अधिकता का विचार करते हैं। 60 नंबर के पृष्ठ पर 84 वृक्षीणान्तःकरणकरणो व्याधिविसृष्ट विवाधि स्पर्धा दग्धा परिभव पदं याप्यकं प्राक्रियांग कृष्णैर्शाद्यै विलगित गृह प्रस्खलत वित्रदन्तो ग्रस्ये ताधा विरसयवन श्राद्ध देवेन वृद्ध। जिसका मन और इंद्रियां विनाश के उन्मुख है, उन्मुख है ना सन्मुख है, मानसिक व्याधियों की स्पर्धा से ही मानो जिसे शारीरिक व्याधियों ने अत्यंत क्षण कर क्षीण कर दिया। क्या कहते हैं, यानी शारीरिक और मानसिक व्याधियां एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं, यानी शारीरिक व्याधियां भी है मानसिक भी है। मानसिक क्या होते हैं, भूल जाना, कुछ याद नहीं रहना, और भी अन्य अन्य या कुछ अलग ही सोचना, दिमाग की कोई बीमारियां होना, जो सबके तिरस्कार का पात्र है, जिसके हाथ पैर आदि अंग बुरी तरह से कांपते हैं और अपना काम करने में असमर्थ है। अति लोभी, क्रोधी आदि स्वभाव के कारण परिवार भी जिससे उठता गया है, मुंह में दो चार दांत शेष है किंतु वे भी हिलते हैं, ऐसे वृद्ध पुरुष को मानो स्वाद रहित होने से मृत्यु भी जल्दी नहीं खाती। चलो ये रुकी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो पारो सोवाणी मस्तकनम सदा।